الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بقرة آية 158 إن الصفا بے شک صفا صفا پہاڑی والمروة اور مروة پہاڑی من شعائر اللہ یہ یقین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں شعائر اللہ ہیں بات ہم لوگ کر رہے تھے پیچھے جو آیات گزر رہی تھی وہ تھی صبر سے متعلق تھی وہ بات کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں صفا اور مروہ پہاڑی کا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تو اس کا پچھلی بات سے کیا لنک بنتا ہے کہاں صفا اور مروہ پہاڑی ہے اور کہاں ذکر ہو رہا ہے صبر کا دونوں کا آپس میں کیا لنک بنتا ہے بات اصل میں یہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ اب جو احکامات آئے ہیں وہ تو حج سے متعلق ہیں لیکن جو ان کا ردم بن رہا ہے یا بات کا جو فلو بن رہا ہے وہ اس سینس میں سمجھ لگ سکتی ہے کہ صبر کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صبر کرنا اس کے اوپر قائم رہنا جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس طرح ہی کرنا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر اس کو فالو کرنے میں بھی کوئی مشکل ہو رہی ہے تو وہ بھی صبر کہلایا جائے گا حرام کی طرف اگر رغبت ہو رہی ہے وہ بھی صبر کہلایا جائے گا یہ تمام چیزیں صبر تھیں تو یہ ایک مثال تھی تاریخ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ دیا تھا تو یہ ایک صبر کی ایک ایگزامپل تھی تاریخ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر یہ ہوا تھا وہاں سے فلسطین اور بلکہ مصر سے اور فلسطین کن علاقوں سے ٹریول کرتے 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 اتنے دور تک آنا اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اور بغیر بہت سارے مادی سہاروں کے پھر اس کے بعد یہاں لا کے چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں جو اس نے چھوڑا ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش تھی ہے صبر کی کہ پیچھے کیا کچھ ہوگا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا مجھے کب تک حکم ہوگا کہ میں دوبارہ ان سے مل سکتا ہوں ان تمام چیزوں کے اوپر صبر کرنا ہے جن کو چھوڑ کے جایا جا رہا تھا ان کے لیے بھی بہت بڑا یہ صبر تھا اس کا اپنا شوہر اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم تھا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا تھا کہ اللہ ہی کا حکم ہے تو اس کے اوپر وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ پھر اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمایا ضرور تھا ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بندوبست کر دیا کہ آب زمزم یہاں پہ موجود ہے یہ کھجوریں ہوں گی اور اس سے تم لوگ جو ہے بینیفٹ لے لو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی یہ چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا آب زمزم تھا وہاں پہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ظہور نہیں کیا ابھی تھوڑا سا آزمائش ہوگی ٹیسٹ ہوگا جب وہ وقت آیا کہ حاجرہ کے پاس جو سامان تھا وہ سارا کا سارا کنزیوم ہو گیا استعمال ہو گیا اب بچے کو بھوک لگ رہی ہے ان کو خود بھی بھوک لگ رہی ہے ملکنگ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ کھائیں گی تو دودھ پلا سکیں گی اس کے اندر کتنی دیر تک پہلے وہ بیٹھی رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یقیناً مانگی ہوں گی انہوں نے انتظار میں کہ کوئی صورت نکل آئے جب بہت بے بسی کا عالم ہو گیا تو چھوڑ کے پھر جو صفا مروہ پہاڑی کے اوپر جو معاملہ تھا وہ ہوا کیا تھا اصل میں بات کیا تھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں ٹیلے تھے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جو ہمارے سیکنڈ فلور یا جو تھرڈ فلور چھت تک کی اونچی جو پہاڑی ہوگی چھوٹے چھوٹے سے ٹیلے ہوں گے اتنی پہاڑی تھی ایک کے اوپر چڑھ کے دیکھتے چاروں طرف کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ رہا ہو کوئی گزرتا ہوا جا رہا ہو تو میں اس کو بلاؤں یا کوئی پانی کے نظر آ جائے کچھ ہو جائے پھر دوسری طرف جاتی تھیں ایک طرف اگر کچھ نظر نہیں آتا تھا وہاں کھڑی ہو کے دیکھتی تھی کہ شاید مجھے یہاں پہ کوئی چیز نظر آ جائے پھر اس کے بعد دوسری طرف پھر دوسری طرف وہ اس طرح کافی دیر کرتی رہی اب ظاہری بات ہے کہ اور کر بھی کہہ سکتے تھے وہ لیکن انہوں نے کوئی بے صبری نہیں دکھائی کوئی کلمہ کفر نہیں کہا تھا منہ سے بلکہ جو حکم تھا اس کے تابع رہی تھیں اور امید پہ تھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی وے آؤٹ دکھائیں گے اور جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزما لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ نکالا تو اسی طرح ہی صبر کی ایک بہت بڑی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ مینشن کر رہے ہیں کہ وہ بھی تھی اور اس کی نشانی ہی ہے یہ صفا اور مروہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو پارٹ آف عمرہ اور حج بنا دیا جو حج اکبر لفظ ہوتا ہے وہ اصل حج کے لیے ہوتا ہے جسے ہم حاجی بولتے ہیں اور بات کی حج اصغر جو ہے وہ عمرے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا پارٹ بنا دیا اس کو یہ ہوگا تو حج عمرہ قبول ہوگا ورنہ حج عمرہ نہیں قبول ہونے والا اب اوور دا ایئر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب شیر کو اور جو عقیدہ تھا اس کے اندر ڈکے آتا گیا تو اس کے اندر اس طرح بھی ہو گیا کہ یہی جو پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ اس کے اوپر انہوں نے بت بھی رکھ لیے تھے जहाँ और इतनी जगहों के ऊपर उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया था, वहाँ क्या कर दिया था कि सफ़ा और मरवा पहाड़ी के ऊपर बुत रख दिए थे। सफ़ा पहाड़ी के ऊपर इसाफ नाम का एक बुत रखा हुआ था और मरवा पहाड़ी के ऊपर नायला नाम की एक बुत रखी हुई थी। और लोग जब इन दोनों के ऊपर तवाफ़ करते थे, इनका सही जिसे बोलते हैं, इन दोनों का जब तवाफ़ या सही करते थे तो वो जाके इनको हाथ लगाते थे, चूमते थे या इनको बोसा लेते थे इनका, कि ये बहुत बरकत और बहुत नेकी का काम हो रहा है। और इसी तरह ही जो अंसार होते थे, जो मक्का के रहने वाले नहीं थे अंसार, वो जब अपने दौरे जाहिलियत में आके हज या उमरा किया करते थे तो उन्होंने एक अजीब सा हिसाब बनाया होता था कि एक बुत होता था वहाँ पे मनात, अगर मनात के पास जाके किसी ने लब्बैक कह दिया तो अब वो सही नहीं करेगा जाके, और सही अगर करेगा तो ये बुरा समझा जाता था। तो इस तरह के अजीब अजीब से रिचुअल्स बनाए हुए थे उन्होंने। तो जब इस्लाम गालिब आ गया और अब मुसलमानों ने हज और उमरा करना है, तो अब उनके दरमियान में यह सवाल पैदा हुआ और खटका उनको लगा कि ये तो बुतों वाली जगह थी है, हम इस बुत पे जाते थे उस बुत पे जाते थे, तो ये तो उन्होंने कराहत महसूस की कि ये तो इबादत का हिस्सा नहीं होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सहाबा आए थे अनसार सहाबा, और उन्होंने आके बताया कि हम दौरे जाहिलियत में इस तरह किया करते थे, सफ़ा मरवा के ऊपर हम लोग इस तरह जाते थे और मनात बुत के आगे अगर लब्बैक कह दिया तो हम बुरा समझा करते थे इसे, हम नहीं पसंद करते थे फिर सही करना। और इसी तरह जो और लोग और तरीके से जो इबादत किया करते थे, उन्होंने इसी तरह दो बुत जो होते थे उन्हीं के समझते थे कि ये दो बुतों के लिए हम लोग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। तो ये सवाल था उनका कि अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल कर दी, इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शायर अल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं ये अल्लाह ताला की शआर में से हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, अल्लाह ताला की दीन की निशानियों में से हैं। जो कुछ इनके ऊपर हो गया था वो गलत था, वो बिदअत थी, वो गुनाह था ज़रूर, लेकिन ये असल तो वही चीज़ थी ना, जो गलत है उसकी झांटी होगी। जिसना काबा तो वही रहा था, बुतों को तोड़ के निकाल दिया गया था, जो गलत उन्होंने इबादत बना दी थी उसको ख़त्म किया था। अल्लाह ताला कह रहे हैं सफ़ा मरवा पहाड़ी जो है वो अल्लाह की निशानियों में से हैं, फमन तो जो कोई भी हज अल बैता जो भी हज बैतुल्ला करे, अवे तमरा या उमरा करे, फला जुनाह अलैहि, तो उस शख्स के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, तवाफा कि वो तवाफ़ करे बैनहुमा इन दोनों का। सही का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं सीन ऐन और या, सही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इन दोनों का तवाफ़ करे, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई हज या उम्रे के लिए जाता है तो वो तवाफ़ करे, इसका सफ़ा मरवा का तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की सही करे। मुस्नद अहमद के अंदर एक वाक़या मौजूद है जो बुखारी मुस्लिम में एक मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने आगे पूछा कि ये आयत है इससे पढ़ के तो ये समझ लग रही है कि फ़ला जुनाह, कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर वो ये कर ले, तो मालूम ये होता है कि ये कोई लाजिम फ़र्ज़ चीज़ नहीं है, ये तो एज़ इफ़ की कोई ऑप्शनल चीज़ थी, अगर ये इजाफी तौर पर कर लिया तो सवाब होगा। तो उसके ऊपर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी तरदीद की थी अरबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर ये बात होती तो आयत यूँ नहीं, इसके अल्फाज यूँ होते, और ये भी बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत अपना करार दिया था और इसको लाजिम करार दिया था कि जो ये नहीं करेगा उसका उम्रा और हज कबूल नहीं होने वाला, तो ये पार्ट ऑफ इस्लाम है। वमन ततअव्वा खैरन, तो जो कोई भी इसका तवाफ करेगा या ये नेक काम करेगा खुश दिली के साथ, अच्छे इरादे, अच्छी नीयत, अच्छी उम्मीद के साथ और दिल की खुशी के साथ ये काम करेगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स का, ऐसे इबादत करने वाले का शुक्रगुजार होगा, और अल्लाह ताला खूब जानता है कि उसने किस नीयत के साथ या कितनी खुशदिली के साथ किया था। अब ये दो हज और उमरा वैसे भी काफ़ी एग्जॉस्ट करने वाली इबादत होती है, अब तो खैर बहुत आसान है क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर तो हमने चलना नहीं होता, अब तो प्लेन उन्होंने लैंड बना दिया है, वो मार्बल है, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, दोनों तरफ जमजम का पानी अवेलेबल होता है वो भी ठंडा, अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई एज का मसला है या वैसे, तो व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल होती हैं आराम से उसके ऊपर हो जाएगा, तो वो जो चढ़ाई और उतराई वाले तो चीज़ रही नहीं है। ख़ास तौर पर उस दौर को इमेजिन करें, उस वक्त को इमेजिन करें कि जब ये नहीं था, इस तरह का नहीं बनाया हुआ था, तो जो पथरीली या जो भी जैसी भी ज़मीन थी उसके ऊपर चलना है पहाड़ी के ऊपर, एक्चुअली चढ़ के जाना है फिर आना है, गर्मी भी लग रही होगी उसके अंदर, इस तरह तो नहीं कि पानी के रास्ते में कुछ चश्मे लगे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ मुश्किल थी। अब तो अगर आप वहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पर सही कर रहे हैं बेशक गर्मियों का महीने थे और अच्छे खासी धूप है बाहर जो कुछ भी है, लेकिन वहाँ तो उन्होंने एयर कंडीशन किया हुआ है उसे, तो वो तो बहुत कंफर्टेबल है। तो जो कोई खुश दिली के साथ इसका तवाफ़ करेगा, सही करेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला शाकिर है और अलीम है। जो सिनेरियो या जिस एनवायरनमेंट में अब हमने करना होता है वो तो ऑल्दो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ये बात है असल में दिल की कैफियत की। बेशक अभी चीज़ें आसान हो गई हैं, और ऑफ कोर्स जो उस दौर में हज किया करते थे, उमरा किया करते थे, उनके लिए डेफिनेटली और तरह का ज़्यादा अजर होगा। अब तो अगर आप वहाँ पे कर रहे होंगे तो उन्होंने तो फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के बाद जो थर्ड फ्लोर ऊपर बना दिया है और उसकी भी छत है, तो वो जो ऊपर वाले हैं वो तो इवन पहाड़ों के एक्चुअल हाइट से भी ऊपर क्रॉस कर गई है वो जगह। जो सेकेंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर उसके ऊपर आपको ज़रूर वो उन्होंने एज के ऊपर जब आप बिल्कुल कोने तक पहुँच जाते हैं तो पहाड़ी का हिस्से छोड़े हुए उन्होंने, उन पर लोग वैसे खड़े भी हो जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं। बहरहाल बेशक आसानी हो गई है, लेकिन अगर कोई शख्स खुश दिली के साथ वाकई एक नेकी के जज्बे के साथ और उसके अंदर दिल के अंदर उसके अंदर एक ख्वाहिश और उसको ये फील हो रहा है कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, उसके साथ अगर कोई नेकी है उस ये काम कर रहा था, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला खुद शुक्रगुजार होगा उसका। लेकिन अगर एक बंदा कर तो रहा है, उमरा भी कर रहा है और हज भी कर रहा है, तो तवाफ भी उसने कर लिया, सब कुछ किया जो जाहिर था, लेकिन उसके दिल की कैफियत का यह हाल नहीं है, तो फिर हो सकता है उसकी इबादत अल्लाह ताला के हाँ उसने कबूल ही ना हो रही हो। सिरे से पैसा भी उतना लगा रहे, जारी बात है एनर्जी भी इतनी लग रही है, लेकिन दिल के अंदर अगर उसको कोई अट्रैक्शन ही फील हो रही है उसकी तरफ, उसको कोई दिल उसका खुश हो नहीं रहा उस इबादत पे, वो सिर्फ एक बोझ समझ रहा है कि अब क्या इतने चक्कर लगाने, मैंने तो 7 चक्कर जो होते हैं एक्चुअली तो 3.5 चक्कर होते हैं, वो सफ़ा मरवा से एक डायरेक्शन में जाना वहाँ एक चक्कर कहलाता है, फिर दूसरा चक्कर, फिर दूसरा चक्कर। तो वो अगर इसके अंदर वो तंग पड़ रहा है और थक रहा है वो, और दिल के अंदर उसको ये हो रहा है कि अब दुआएं भी मांगनी है मैंने, तो दुआएं भी खास नहीं मांग रहा अल्लाह ताला से वो, तो वो फिर जारी बात है उसने एक एक्सरसाइज ऐसी की जिसका एंड में जाकर उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह ही हो जाएगा कि अगर एक शख्स रोज़ा रखा, उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, पूरा दिन गुजरता गया गुजरता गुजरता गया, और रोज़े से थोड़ी देर पहले जब रोज़ा खुलने का वक्त हो गया था तब वो कुछ खा पी ले, तो ये उसी तरह ही हो गया कि उसने सब तमाम चीज़ें वो सही, वो तमाम जो तकलीफ़ें जो बर्दाश्त करनी थी या जो चीज़ें सब्र करना था जिन के ऊपर, उसने सब चीज़ों को टॉलरेट करता रहा करता रहा, लेकिन एंड में जाके एक ऐसी गलत हरकत कर बैठा जिसकी वजह से उसकी वो इबादत ज़ाया हो गई। सफ़र सारा किया उसने लेकिन ज़ाया हो गई। तो बिल्कुल इस तरह ये हाल हज उम्र का भी होगा कि अगर दिल से रजामंदी नहीं है, दिल के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल ही ना करें। तो अल्लाह ताला अगर शाकिर है, और तो साथ ही अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अलीम भी है, अल्लाह ताला हर एक का हाल जानता ज़रूर है कि कौन किस इरादे के साथ कर रहा था। कोई और बंदा आपको देख के तारीफ ना करे कि ये तो बहुत नेक बंदा मालूम हो रहा है, अल्लाह ताला के इल्म में है कि कौन किस तरह से किस इरादे के साथ और किस नीयत के साथ नेकी कर रहा था। तो सब्र के साथ इसका ये ताल्लुक था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मेरी निशानियों में से है। अब अगली आयत जो है आयत 159, उसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग यक्तुमूना, जो छुपाते हैं, मा अनज़लना मिनल बय्यिनात, जो कुछ नाजिल किया था हमने बय्यिनात में से, वाज़ह चीज़ों में से, वल हुदा मिन बाद मा बय्यिनाहु लिन्नास, बेशक वो लोग छुपाते हैं हमारी वाजे की हुई बातों को, हमारे वाजे की हुई निशानियों को, आयात को, कुरान को, या और पुरानी पिछली किताबें जो हैं उन तमाम चीज़ों को जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, और उसके ऊपर बयानात उसको वाजे भी कर दिया, उसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई, लोगों के लिए एक एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर कोई छुपा रहे हैं अल्लाह ताला उनका जिक्र कर रहे हैं, मा बय्यिनाहु लिन्नास फिल किताब, जो हमने वाजे कर दिया था लोगों के लिए किताब में, वो तमाम बातें, उलाएका ये वो लोग हैं, यल अनहुमुल्लाह, जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत की है, व यल अनहुमुल्लाइनून, और उनके ऊपर लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले। पहले इस आयत का पहले वाला ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि वो लोग किन लोगों की बात हो रही है कि जो छुपाते हैं, और दूसरी बात यह कि छुपाते क्यों हैं, वो कौन छुपाते हैं और क्यों छुपाते हैं। इसके अंदर पिछले जो अहले किताब है वो भी मुराद हैं इसके अंदर, कि अल्लाह ताला पहले भी कहते आ रहे हैं, उन्हें बार बार ये तंबीह कर रहे हैं कि तुम्हारे पास निशानियां हैं हमारे आखिरी रसूल की, और तुम उन्हें छुपा रहे हो, लोगों के आगे वाजे नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करो, तुम ये कर रहे हो तो तुम इनका बवाल उठाओगे, इसका गुनाह तुम उठाओगे अपने ऊपर, वो भी मुराद हैं इससे। अब वो क्यों छुपा रहे थे, जिस तरह मैं बार बार इसको वाजे कर चुका हूँ इस बात को, कि वो अगर उसको जाहिर करेंगे तो लोग ईमान ले आएंगे, फिर बात कुछ पीछे बचती नहीं है। अगर ईमान ले आएंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा इनकी क्या हैसियत होगी, ये खुद भी अगर ईमान ले आए तो ये आगे जाके इस्लाम के अंदर इनकी क्या हैसियत बचेगी। तो जो कुछ भी उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इनका स्टेटस को बना हुआ था, इनके माशरे के अंदर जो एक हैसियत थी, वो एट स्टेक हो जाती है इस तरह, तो वो छुपाएंगे इस बात को। फिर उसके अलावा उनमें से कुछ थे जो और वजूहात की वजह से भी छुपा रहे थे, उनके अंदर नफरत, बोझ और हसद भी था, और अपने नस्ल की सुप्रीमेसी थी कि हमारी जो नस्ल है ना ये असल डिजर्व करती है, ये तो चोजन पीपल ऑफ द गॉड है, बाकी लोग ये तो सुपीरियर तो नहीं है, ये तो इन्फीरियर रेस है, हम सुपीरियर हैं बाकी तो सब इन्फीरियर रेस है, इन तक तो हम इनकी बात तो नहीं मान सकते, इन में रसूल आ जाए हम एक्सेप्ट कर लें। उनके अंदर इस चीज़ का गुस्सा भी था कि आखिरी रसूल हमें क्यों नहीं आया, वो और वजूहात भी थी। फिर उसके बाद जब इस्लाम आ गया और इस्लाम की इब्तिदा जो हमारा सुनहरी दौर था उसके अंदर ये तबका तो थे ही नहीं कि अलग से ये कहा जाए कि ये आलम दीन है, सब सहाबा जो थे वो अपने अपने एंगल के ऊपर आलम दीन थे, क्योंकि जितनी भी हदीसों की किताबें हैं ये इतने बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से जो सहाबा ने बयान की हैं वो सब सहाबा के पास ये इल्म था, तभी तो वो बयान कर रहे थे, वरना तो सिर्फ दो तीन ही होते कि हाँ बस यही आलम दीन थे, इन्होंने ही बताना है। हमें तो इवन वो सहाबा के नाम तक नहीं याद हो सकते, हम तो सिर्फ चंद नामों को याद करते हैं, वरना इतने बेशुमार जो लंबी कड़ियों के अंदर नाम आ रहे होते हैं, फलाने ने इससे सुना, फलाने ने इससे सुना, ये वाक़या हुआ था, फलाना हुआ था, तो वो तमाम के तमाम जो थे वो दीन का इल्म और फहम और समझ रखते थे। ये तबका थे ही नहीं कि ये मौलवी तबका है, ये आलिम तबका है, इनसे जाके फतवा मांगा करेंगे, इनसे जाके हम मशवरे किया करेंगे, ऐसा कोई बात थी नहीं। तो वो जो दौर था हमारा इस्लाम का, वो जो पीक सुनहरी दौर था, उसके अंदर तो अवाम को इनक्रेज किया गया था, इस्लाम का फैलाया गया था सही तरीके से। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब खिलाफत मलुकियत में तब्दील होती गई, बादशाह हो गए वो, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब डिके आया मॉरल इबादत के एतबार से भी और मॉरली भी, तो फिर होना क्या शुरू हुआ कि तबकात फिर जाके बनना शुरू हुए। कि एक तबका तो वो था कि जिन्होंने इस्लाम और इन चीज़ों से बस साइड पे रखा है इन्हें, कि बस जो रूटीन की चीज़ें हैं वो तो ठीक है, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। कुछ तबकात ऐसे हुए उनमें से कि जिन्होंने दीन को पकड़ा, उनको थामा, खुद भी सीखा, तदब्बुर भी किया कुरान पे, दूसरों को सिखाया, फिर बाद में जाके जब और ज़्यादा वक्त गुजरता गया तफसीरें भी लिखी और बहुत तरीके से अल्लाह ताला की बात को वाजे किया। उनमें अब जो इख्तलाफात कभी होते रहे बीच में, तो उन इख्तलाफात को उनकी हद तक तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद, दुनिया के जाने के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उन इख्तलाफात को जिद की वजह बना ली, शिकायत बना लिया उसे कि ये अब हम, हमारे उस्ताद ने हमें ये बताया था, हम तो बस यही बात मानेंगे, दूसरे किसी की हम बात नहीं मानते। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह की चीज़ें आना शुरू हुई थी, अवाम आहिस्ता आहिस्ता करके अवे होती रही किताबों से, और जो दूसरे थे उन्होंने उसको जब अपनाया, लेकिन अपनाया फ़िरका वारिया तो उन चीज़ों के साथ, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कि जो अवाम है ये तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके निकम्मे होते जा रहे हैं, हम पे डिपेंड कर रहे हैं ये, तो अब हमारा टाइम हो गया कि हम भी इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वाज़े हो गया था लोगों के लिए, वो बात वाज़े है, किस चीज़ की बात हो रही है, इस कुरान की बात हो रही है, वो बहुत वाज़े चीज़ है, उसके अंदर कोई टेढ़ी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है, समझने के लिए, अमल करने के लिए किसी एतबार से इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं है, ये वाज़े है। लेकिन अब जिसने पढ़ाना है आगे, जिसने समझाना है, अब वो उसको मुश्किल करके पेश करेंगे ताकि अगले बंदे को लगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो ये कुरान का इल्म और दीन का इल्म और ये जो बातें बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है, हमारी बस से बाहर की चीज़ है ये, तो बस डिपेंडेंस हो जाए कि अगर हमें अब कुछ चाहिए होगा तो हम जाएंगे अपने उलमा के पास जाएंगे, मुफ्तियों के पास जाएंगे। वो फिर ऐसा ऐसा करके उन्होंने इसको प्रोफेशन बना लिया कि आपको वो दीन का मसला पूछना है, जो कुछ भी करना है आप आए फतवे लें, फतवे विद फीस होगी, फीस देंगे तो हम आपको फतवा दे देंगे। आजकल के अतबार से ज़्यादा मॉडर्न हो गया है कि ये टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम्स होते हैं, कि दीनी प्रोग्राम जितने भी होते हैं, कि आप फ़ोन कॉल करें और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, वो फ़ोन कॉल दूसरी वाली होती हैं जिसके थ्रू वो कमा रहे होते हैं, आप कॉल करें आपको 25 रुपये पर कॉल पड़ रही होगी, इतने रुपये पर कॉल पड़ रही होगी आपको, ये तो कमाई का जरिया बनाया हुआ है इन्होंने, दीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फिर इसी तरह ही वो लोग जिन्होंने अपने अपने मसलक तो बना लिए और अपने अपने उनमें लग गए, अब जारी बात है उनकी दुकान तब तक चलेगी जब तक वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करते रहेंगे, चाहे उनको खुद पता हो कि जो हम बता रहे हैं ना या हम जो लोगों को समझा रहे होते हैं ये कुरान के खिलाफ है, लेकिन उसके पीछे उनके अपने पेट लगे हुए हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल, सियासी या माशरे के अंदर सोशल हैसियत है, वो उसकी वजह से उसको एट स्टेक नहीं करना चाहते, इसलिए वो दूसरी बातें कभी भी नहीं बताएंगे कि मस्जिदें जो मर्जी हों कभी भी मेंबर रसूल के ऊपर कुरान नहीं पढ़ाए जाते हैं। और जब कुरान की कोई बात होगी तो अपने मर्जी के जो हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सूट कर रही है, बस वो आया 2, 4, 15, 20, 50 वो तो बता देंगे, वो भी पूरा कुरान नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरा कुरान की बात आएगी तो ये खुद ब खुद तमाम मसलक जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, इनकी हैसियत ही ख़त्म हो जाती है, जिन बातों को ये बहस का इशू बनाया होता है उन्होंने वो बातें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ बचता नहीं है पीछे। हालांकि जुम्मे का आप देखें तो कितना ज़बरदस्त निज़ाम था ये वाला, कि एक हुक्म है जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दिए है और जिसको रसूलुल्लाह सल्लम ने हमें करके दिखाया कि पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब हर एक ने आना है खुतबा सुनने के लिए, मस्जिद में आना है, उस वक्त तजारत, खरीदो फरोख्त की तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं, चाहे आप इस्लामिक बुक्स की कोई शॉप थी अगर आप वो उसका काम कर रहे हैं दीन फैलाने वाली चीज़ है, लेकिन अगर जुम्मे के टाइम वो हो रहा है तो वो हराम रिस्क हो जाएगा वो वाला, इतनी स्ट्रिक्टनेस है उसके ऊपर, हर एक ने लाजमन आना है। रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया है कि जिसने लगातार 2 जुमे मिस कर दिए है जान पूछ के, यानी कि बीमारी या कोई और उजर नहीं है, तो उसके ऊपर तो मोहर लग गई फिर अल्लाह ताला की तरफ से, तो इतनी सख्त बातें की गई हैं, इतना ज़्यादा प्रोवोक किया गया है कि आओ तुम लोग यहाँ पे। रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औरतों को मस्जिद जाने से हरगिज़ मत रोको, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्दों के लिए 100% फ़र्ज़ है, औरतों के लिए 100% ऑप्शनल है, वो अगर जाना चाहें तो ज़रूर जाए वो। हम लोगों ने नंबर 1 काम क्या किया कि औरतों का तो कोई बंदोबस्त होता ही नहीं किसी मस्जिद में हमारी, उनको तो हमने उठा के साइड पे किया हुआ है। अब जो बंदों वाला भी जो काम है उसके अंदर भी जितने भी जुम्मे के खुतबे होते हैं इनके अंदर हम लोग पहुँचते हैं बिल्कुल एंड के अंदर, जब वो अरबी के आखिरी चंद बातें बताई जा रही होंगी, जो खुतबा हो रहा होगा जिसको वाज़ कहते हैं वो सुनेंगे नहीं हम, जो खुतबा होगा उसमें कख नहीं पता कि बोला क्या जा रहा है, उसमें अक्सर इमाम को भी नहीं पता होता कि ये जो बात बताई जा रही है खुतबा जो है इसमें बोल क्या रहा हूँ मैं, मतलब क्या इसका, तो वो तरबियत तो वो तमाम चीज़ें कहाँ गई। अगर बिलफर्ज वाकई इस तरह होता जो तरीका है उसका कि हर हफ्ते इस तरह तमाम लोग जाया करते मजमे की तरह, पूरी फैमिलीज के फैमिलीज जाया करती हैं, कोई बंदा पीछे नहीं रहेगा और कुरान ही पूरा पढ़ाया जा रहा होता, उसके अंदर कुरान ही के मुताबिक समझाया जा रहा था, तो किस कदर आप सोचें कि किस कदर सोसाइटी के अंदर बात फैल सकती थी। ये तो मिनते तरले कर करके कितना अरसा गुजर गया है कि यहाँ पे जो कुरान क्लास जो हो रही है इसमें लोग आए लोग आए लोग आए, कितने लोग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी स्ट्रेंथ है उसमें 3-4 ज़्यादा और आए होंगे आज तक, 5-6 आ गए होंगे और ज़्यादा, जो को आता ही नहीं इसके अलावा और कोई। जुम्मे में कभी देखा करें कि जब जुम्मे का टाइम होता है तो सफ़े जो होती हैं जो ख़ासतौर पर जो बाज़ारों उन जगहों पर होता है वो रोड के ऊपर सफ़े बिछी भी होती हैं, इतने लोग आए होते हैं, तो कितना बेहतरीन निज़ाम बताया था अल्लाह ताला ने कि एजुकेट करने का। अब उसको दबा के और हमारे जितने भी खुतबे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मसलक की बातें कर रहे होते हैं, वही किसी पीटी चंद जो मौजू होंगे उन्हीं को रिपीट कर 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 करके बयान किया जा रहा होगा, जो बात समझा रहा होगा जिसका असल काम था जो उस दौर के तो खलीफा और गवर्नर तो वो होया करते थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब गवर्नर कौन होगा, जहरी बात है जो हर एतबार से अच्छा होगा, उसको मामला फहमी भी है उसके अंदर, वो इंसाफ भी करेगा क्योंकि वो जज भी होगा कुछ केसेस के अंदर, उसको दीन का भी पता होगा, वो हर लिहाज से होगा, तब जाके वो गवर्नर भी हो सकता है और इमाम भी हो सकता है वो। अभी इधर हमारे जो इमाम होते हैं इनको सवाए जो उन्होंने मदरसे के अंदर जो पढ़ लिया होता है उसके अलावा उन्हें कख नहीं पता दुनिया का, उन्हें कुछ नहीं पता, और वो किस मामले में हिदायत कर सकते हैं हमारी, किस मामले में हमें वो समझा सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको तो पता ही नहीं, उनके पास कॉन्टेंट ही नहीं बताने को, वो चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने बस रटी हुई हैं याद की हुई हैं वही बताएंगे। और अगर कोई बात इस्लाम की ऐसी जो उनके उसको क्लैश कर रही है वो उसको छुपाएंगे, जो दुनिया परस्त उलमा है वो या जितने गद्दी नशीन पीर वगैरह ये सब इस तरह का अमल करेंगे क्योंकि उनकी रोज़ी उससे चल रही होती है उनकी, उन्होंने जब तक अपना रोब नहीं डाला होगा आवाम के ऊपर। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो किसी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से, रिलीजियस रीज़न की वजह से, अना ईगो की वजह से, सोशल हैसियत की वजह से, पॉलिटिकल वजह से, किसी वजह से अगर वो अल्लाह ताला की किताब की कोई बात छुपाते हैं, अगर कोई छुपाते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लानत है मेरी उनके ऊपर। लानत का मतलब क्या होता है? लानत का मतलब होता है बदवा है ये कि रहमत से दूरी। जिसने रहमत करनी थी अगर वही कह रहा है कि मेरी रहमत से दूरी है, तो क्या सवाल पैदा होता है कि उसके ऊपर रहमत हो सकती है? जिसने रहम करना था वो ज़ात खुद अगर कह रही है कि मेरी लानत है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या रहम हो सकता है फिर? वयल अनहुमुल लाइनून, और उनके ऊपर लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले। इसमें कुरान के और मकामात से भी मालूम होता है कि जो लानत है वो अल्लाह ताला ने रसूलों की ज़ुबान से भी और फरिश्तों की ज़ुबान से भी कलवाई हुई है, और नेक लोगों की ज़ुबान से भी कि इनके ऊपर लानत है। साथ साथ यहाँ पे ये भी क्लेरिफिकेशन हो जाए कि लानत को जब हम भी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, तो इस चीज़ को सख्त मना किया गया। ये बददुआ जो है ये अल्लाह ताला ने मना किया है कि ये तुम लोगों ने नहीं देनी। अल्लाह ताला ने जिसको लानत दी या जिसके बारे में रसूल सल्लम का जिक्र आ गया, जिस तरह लानत की गई है उन औरतों और उन मर्दों के लिए जो एक दूसरे की मुशाबियत इख्तियार करते हैं, एक दूसरे जैसा बनते हैं, रसूल सल्लम ने लानत भेजी है उनके ऊपर। लेकिन हमें मना किया गया है कि हम किसी और के ऊपर नहीं कह सकते कि लानत है उसके ऊपर। हम कह देते हैं, गाली के तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग, गुस्सा उतारने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर देते हैं लानत का लफ्ज़। गाड़ी में कहीं चलते हुए अगर कोई गाड़ी आगे पीछे हो गई थी, कुछ आपकी ब्रेक लग गई, तो गुस्से में कह देंगे। किसी रिलेटिव के ऊपर गुस्सा चढ़ गया था, किसी दोस्त के ऊपर, तो बोल देंगे है ही लानती इंसान है, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे। मलून है ये, तो लानत शुदा है ये। लेकिन इस चीज़ को अल्लाह ताला ने और रसूल सल्लम ने मना किया, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये चीज़, ये बदवा देना हमारे इख्तियार में नहीं है। और उन्होंने जो कह दिया ना जिसके बारे में, ये तो हम पढ़ते रहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर लानत है, जो ऐसे लोग होंगे उनके ऊपर लानत है। लेकिन नाम लेके कहना कि फलाना जो बंदा है ना उसके ऊपर लानत है, ये हमारे ऊपर, हमारे पास अख्तियार नहीं है। तो जिसने रहमत करनी थी वो, और जिसने शिफात करनी थी वो, जब उन दोनों के तरफ से लानत है, तो वो बंदे की कहाँ छुटकारा हो सकता है, कहाँ बच के जा सकता है वो? अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, इल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो कि तौबा कर लें। बेशक पहले जो मर्जी करते आ रहे थे, मेंबर रसूल के ऊपर या किसी किताब का लिखा ऑथर रहे हुए हैं, या दूसरे लोगों को गुमराह करते आए हैं, अपने अपने से छोटों को या अपनी फैमिली वालों को गलत रास्ते पे लगा के रखा हुआ था उन्होंने, जो मर्जी वो करते आ रहे थे, बच कौन सकता है इस लानत से, अल्लाह ताला की इस कदर सख्त वही से कौन बच सकते हैं? वो लोग जो तौबा कर लें, ताबू तौबा कर लें, वाकई रोए अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह मैंने बहुत गलती की है, बहुत गुमराही इख्तियार की थी मैंने। सिर्फ तौबा करना काफ़ी नहीं है, वह असलहू, और वो फिर इस्लाह भी करें, करेक्शन करें इस बात की, मेक श्योर करें कि वो बात जो उसने कहा था ना, आप उसकी करेक्शन करें कि वो जो मैंने बात की थी वो गलत है। वो बैन, और ये भी नहीं, बयान भी करें इसे। अब बिलफर्ज ये है कि मैंने अगर आप लोगों को इस क्लास के अंदर कभी किसी पहले किसी क्लास के अंदर बिलफर्ज मैंने अगर कहीं बेईमानी की थी पढ़ाने के अंदर, मैंने बेईमानी की थी, मैंने गलत अपनी मर्जी के हिसाब से कोई मफहूम निकाल लिया था, बात को अपनी तरफ फेर लिया था, अब अगर मैं उसके ऊपर माफ़ी मांगना चाहूँ अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तौबा करो, लेकिन तौबा काफ़ी नहीं है, पहले अपनी इसलाह करो, तुम खुद ठीक हो, आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। वो बैनू, और जो जो तुमने गलत बात बताई थी वो आके फिर हर एक को वाजे करो। अब ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर ईगो आ जाती है बंदे की, अपनी इज्जत नफ्स आ जाएगा, मैं जानमाल पर बैठ के तो तौबा कर लूँगा, लेकिन एक एक बंदे को जाके मैं बताऊंगी जो मैं आपको बताता आ रहा था ना वो सब गलत था, जो या जो फलानी बातें थी ना वो गलत थी, ये इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा कर सका, वाकई उसके अंदर इतना ईमान हुआ, अल्लाह ताला की पकड़ से इतना खौफ हुआ कि उसने तौबा भी कर ली, अपनी इसलाह भी कर ली, और फिर लोगों को वाजे करके बताया कि वो तमाम चीज़ें जो थी वो गुमराही के रास्ते थे जो मैं समझा रहा था, फ़ाउलाएका अतूबु अलैहिम, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके ऊपर तौबा कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है। वह अनत तवाबुर रहीम, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो मैं तो हूँ ही बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। तौबा का मतलब होता है पलटना, लौटने को कहते हैं। तो एक इंसान सीधे रास्ते पर अपने रब के रास्ते पर चल रहा था, उसका रुख अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ताला की रहमत का भी रुख उसकी तरफ है, अब वो किसी और रास्ते पे चल पड़ा, पगडंडी पे चल पड़ा कि और निकलता क्या निकलता है, मुंह फेर लिया उसने, तो अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमत का जो रुख है वो उससे हटा लिया। लेकिन अब वो तौबा करता है, तो तौबा का मतलब लौट के आना, वापस आए, ट्रेस बैक करके वापस पहुँचे उस रास्ते की तरफ। तो जब वो आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मेरा रुख भी उसकी तरफ वापस हो जाता है। वो मशहूर हदीस आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई शख्स अगर मेरी तरफ हाथ भर आता है तो मैं उसकी तरफ आजू भर आता हूँ, कोई शख्स अगर मेरी तरफ चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ। अब इसका ऑपोजिट भी है, पहले ही बता दिया कि अगर उन्होंने तौबा कर ली तो फिर उनकी बख्शिश है, उनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेंगे, माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला। इन्नलज़ीना कफरू, लेकिन वो लोग जो अड़ गए इसके ऊपर, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम तो नहीं तौबा कर सकते, या तौबा कर ली लेकिन मैं इसलाह नहीं करूँगा अपनी, या इसलाह कर ली बयान नहीं करूँगा मैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट है आखिर, इतने अरसे से मैं बताता आ रहा हूँ बातें, कोई रिस्पेक्ट है मेरी, मैं किस तरह लोगों को फेस करूँगा फिर बाद में जाके, किस तरह जाके बताऊँगा मैं। तो वो चीज़ें अगर उसके आ गई, वो अगर लोगों को धोखा दे रहे हैं, ड्रामा रचा रहे हैं कि शो कर रहे हैं कि हमारे पास बड़ी रूहानियत है, हमारे पास फलानी चीज़ है ये है, और जबकि हकीकत में उनके पास कख नहीं है, जबकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना रूहानियत है, ना कोई खुफिया इल्म है, ना फलानी चीज़ है, ना कुछ है, ना वो बख्शिश करवा सकते हैं, ना कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं वो आखिरत में जन्नत का, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो कुछ भी उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, बिलफर्ज़ उनकी ज़िंदगी, उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि उनका अपना दिल जो है वो लरस जाता है इस चीज़ से कि हमने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह किया हुआ है और ये वाकई झूठ है जो कुछ भी हम कह रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर उन्होंने तौबा कर ली, इस्लाह कर ली और बयान कर लिया तो अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करेगा। लेकिन इन्नलज़ीना काफ़रू, वो लोग जो अड़ गए, अब तमाम जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं तमाम बातों को माइंड में रखें, वो लोग जो अड़ गए, कुफर किया, नहीं माना इस बात को, वह मातू, और वो मर गए फिर, वह हम कुफारुन, और वो थे ही इस हाल में, काफिर ही थे जब वो मरे, तब वो उसी हाल में उसी स्टेट में ही मरे। यहाँ पे जो कुफर, जो इनकार करने की बात हो रही है, वो इस बात का इनकार हो रहा है कि हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते, हम तौबा या हम लोग बयान नहीं कर सकते, उस चीज़ का इनकार की बात हो रही है, और वो मरे इस हाल में कि वो इनकारी थे। उलाइका अलैहिम, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर है लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत है, वल मलाइकाते, और अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, वन नास अजमाइन, और तमाम लोगों की लानत है इनके ऊपर। खालिदीन फीहा, इसके अंदर, इस लानत की पोजीशन के अंदर और इस रहमत से दूरी की पोजीशन के अंदर वो हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, उनके ऊपर से किसी किस्म के अज़ाब में कोई तख़फीफ़, कोई डिस्काउंट नहीं किया जाएगा, कोई कमी नहीं की जाएगी। वलहुम युनज़रून, और ना ही उनकी तरफ देखा जाएगा, उनको परवाह भी नहीं की जाएगी कि वो कौन थे। एक है ना कि एक बंदा कोई तकलीफ़ में था, कोई परेशानी में था, आप उसकी लम्हे के लिए बात तो सुने उसकी तरह, ये कि परवाह भी नहीं की जाएगी, वो जिस अजाब में है, जिस चीज़ में लगे हुए हैं, वो उसी में पड़े रहे मरे, ना कोई मोहलत देंगे अल्लाह ताला, ना कोई उनको गैप दिया जाएगा कि चलो बहुत अजाब हो गया इनके ऊपर, अब थोड़ा सा इनको ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, इसमें हमेशा रहेंगे, ना कोई तख़फीफ़ होगी और ना ही अल्लाह ताला इनको तरफ देखेंगे, रहमत नहीं करेंगे, यानी कि ये मुराद है। तो इस कदर सख्त चीज़ें मुराद हैं इससे, इतना ये जो गुनाह है लोगों को गुमराह करना और गलत बातों का दावा करना, दीन को बिगाड़ के पेश करना, छुपाना, इनके ऊपर इस कदर सख्त जो है वो पकड़ है। अल्लाह ताला सूरह जुमा की आयत 5 के अंदर फरमाया हुआ है, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, मिसाल उन लोगों की जिन लोगों को हामिल तौरात बनाया गया था, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जिसको इनहेरिट किया था, वो कौन थे? उलमा थे उनके, जो उनके उलमा थे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, जिन्होंने उस किताब को इनहेरिट किया था। इसकी बल्कि मैं वजाहत एक हदीस से कर दूँ, जामे तिरमिज़ी और अबू दाऊद की एक हदीस है, लंबी हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा ये है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा हैं वो वारिस हैं अंबिया के, तो अंबिया जब चले जाते हैं तो जो कुछ छोड़ के जाते हैं उसके फिर वो जो आगे लीड करना है, जो आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करना है, नबी तो चले गए, उनका वक्त जब पूरा हो गया, आपका मैसेज का वक्त पूरा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम थे तो फौत हो गए, जब हारून अलैहिस्सलाम फिर बाद में बने वो भी फौत हो गए, इस तरह या बाकी जितने भी उम्मतों के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन, जो उनके हवारी थे, हवारी के बाद जो उनके उलमा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा, और उसके बाद जो भी आगे इनहेरिटेंस में इस इल्म को आगे लिया, अब इनका क्या काम था कि जो कुछ किताब के अंदर है इसके ऊपर अमल करें, इसके मुताबिक ईमान लाएं, इसको फैलाएं दुनिया के अंदर, इसको कायम करें, नाफिज करें, इसको एजेंडा बनाएं अपने उस चीज़ का। तो जो अहले किताब थे, जो यहूदी थे, जिनको हामिल तौरात बनाया गया था, सुम्मा लम यहमिलुहा, और उसके बाद वो उसको ना उठा सके जिस तरह उसका उठाने का हक था। कमसल हिमारिन, तो उनकी मिसाल एक गधे की सी है। यहमिलु असफारा, कि उसके ऊपर भी एक बोझ डाल दिया जाता है। बस उसके ऊपर बोझ तो है, उस गधे को ये तो नहीं समझ लग रही कि ये बोझ मेरे ऊपर क्यों है और क्या है इसका मतलब, क्या उसका। इसी तरह ही इन उलमा के ऊपर, सवाए ये कि किताबों की किताबें लादी हुई हैं इनके ऊपर, बहुत इन्होंने किताबें पढ़ ली हैं, बहुत इल्म हासिल कर लिया, बहुत किताबें लिख ली हैं, बहुत बयान कर दिए हैं, लेकिन इनकी हकीकत अल्लाह ताला के नज़दीक गधों की सी है। बेसा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बहुत ही बुरी मिसाल है उस कौम की जो अल्लाह ताला की आयात को इनकार कर देती है, उनके साथ झुटला देती है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसी ज़ालिम कौम को कभी भी हदायत नहीं देगा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु अलैक।